तत्र तत्पश्चात अन्योन्य एक दूसरे से सतत्नाः सभी लड़ाकू बनकर ते वे समृद्ध अत्यंत क्रुद्ध मनसः मनसे रणे युद्ध में समासाध्य परस्पर लड़ने का अवसर पाकर असी भी ही तलवार से बाणे हैं बाणों से निजग्नु एक दूसरे को मारने लगे। विविध आयुधय विभिन्न प्रकार के हथियारों से। अनुवाद और तात्पर्य इस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। उस युद्ध में दोनों ही दल भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवारों बाणों तथा नानाविध अन्य हथियारों से प्रहार करने लगे। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में अपितु उच्च लोकों में भी सदा से दो प्रकार के मनुष्य रहे हैं। सूर्य तथा चंद्र जैसे लोकों में आधिपत्य जमाने वाले सारे राजाओं के भी राहु जैसे शत्रु रहे हैं। सूर्य तथा चंद्रमा पर यदा कदा राहु द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण ही ग्रहण लगते हैं। असुरों तथा देवताओं की लड़ाई निरंतर चलती है। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक दोनों पक्षों के बुद्धिमान पुरुष कृष्ण भावना भावित ना हो जाएं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाउं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।
सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्सारकमद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाई अति नीचो चतह कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम नारद कंठ यो स्फुरा।
हरे कृष्ण। समुद्र मंथन की कथा चल रही है इन अध्यायों में, और पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अमृत प्राप्त हुआ और फिर उस अमृत को भगवान ने धोखे से मोहिनी अवतार लेकर केवल देवताओं को दे दिया, दानवों को कुछ नहीं मिला। तो अभी इस अध्याय में वर्णन किया गया कि क्योंकि दानवों को कुछ नहीं मिला, इतनी मेहनत उन्होंने भी की अमृत के लिए, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने आक्रमण किया देवताओं पर। तो इसीलिए इस अध्याय का शीर्षक है देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम। तो इसमें प्रायः उनके युद्ध का वर्णन है। प्रारंभ के करीब 40 श्लोक केवल उनके युद्ध का वर्णन करते हैं, कैसे युद्ध हुआ, कैसे मारे गए, किसने कितने तीर चलाए इत्यादि। और फिर अंतिम दो भाग हैं बड़े महत्वपूर्ण। इस युद्ध में जब दानवों की हार होने लगी तो 40वें श्लोक तक ये वर्णन है। फिर उसके बाद बलि महाराज ने मोह प्रकट किया, मोह में डालने वाली चीजों को, मायावी चीजों को प्रकट किया, और जिससे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। और फिर अंतिम 5 श्लोकों में 53 से लेकर 57 तक ये वर्णन है कि कैसे भगवान ने उनको बचाया। तो पहले 40 श्लोकों में केवल युद्ध का वर्णन है, फिर 41 से लेकर 52 श्लोक तक ये वर्णन है कि कैसे बलि महाराज ने ये मोह प्रकट किया, मायावी शक्तियों को प्रकट किया, और फिर अंतिम विभाग भगवान ने कैसे देवताओं की रक्षा की। तो ये पूरा विभाग है, और इस पूरे अध्याय में प्रभुपाद ने केवल 2 या 3 श्लोकों पर ही तात्पर्य दिया है, ज्यादा तात्पर्य नहीं दिया इस अध्याय पर। तो जैसे जब भगवान ने सारा अमृत बांट दिया, सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि फिर भगवान चले गए, गरुड़ पर सवार हुए, गरुड़ को बुलाया और वो चले गए, अपना कार्य पूरा हो गया और भगवान वहां से चले गए। और उस समय देवताओं को जो अमृत मिला था, देवता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन दानव ये बड़े दुखी हो गए, क्योंकि इतनी मेहनत कर कर भी उनके साथ धोखा हो गया, किसी को भी अमृत नहीं मिला। राहु जिसने धोखे से ले लिया था बस उतना ही। तो इसीलिए क्रोध में आकर उन्होंने आक्रमण कर दिया, अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर देवताओं की ओर भागे, उनको मारने के लिए, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। और फिर देवताओं की तो शक्ति बढ़ चुकी थी, अमृत पी चुके थे, तो अब देवताओं ने भी बड़ा तीव्रता से युद्ध किया, तो बड़े भयंकर युद्ध हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है कौन कौन सा वाहन लेकर उन्होंने युद्ध किया, हर प्रकार के वाहन को, बंदरों के ऊपर बैठकर भी युद्ध हुआ ऐसा वर्णन है। तो जितने भी वाहन मिले, जैसे भी जो भी प्राणी मिले, उनके ऊपर बैठकर युद्ध हो रहा है, बहुत तीव्र युद्ध। इतना उसका वर्णन किया गया कि कैसे उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वे लोग भाग रहे हैं एक दूसरे के प्रति, जो धूल उड़ रही थी वो इतनी उड़ गई कि पूरा आकाश उससे फैल आवृत हो गया, ढक गया, इतनी धूल उड़ी उनके युद्ध से। ये वहीं पर क्षीर सागर के तट पर हो रहा है युद्ध, तो इतनी सारी धूल उड़ी। लेकिन जब युद्ध होने लगा तो वर्णन करते हैं कि खून की इतनी बूंदें या खून इतना फैला कि वो जो सारा वो धुआं था वो बैठ गया खून के कारण, यानी मिट्टी उड़ी लेकिन इतना खून भी उड़ा कि उससे वो सब बैठ गए।
तो ऐसे बड़ा युद्ध हुआ, गले काटे गए, हाथ काटे गए, पांव काटे गए, बहुत कुछ हुआ। तो ऐसा ये युद्ध हुआ बड़ा भयंकर। इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर आए, बलि महाराज भी उधर एक बहुत सुंदर विमान पर बैठकर उन्होंने युद्ध किया। अन्य लोगों ने अन्य अन्य वाहन लिए, सभी देवताओं ने युद्ध किया। शिव जी ने युद्ध किया, वरुण ने युद्ध किया, चंद्र ने युद्ध किया, यमराज ने युद्ध किया, सबका वर्णन दिया गया है किसने किसके साथ युद्ध किया। तो ऐसा भयंकर युद्ध अब प्रारंभ हो गया देवताओं और असुरों के बीच में। तो इस युद्ध से, जैसे प्रभुपाद यहां तात्पर्य में समझा रहे हैं कि सदैव से ये युद्ध चलता रहता है, तो असुरों और दानवों के बीच ये युद्ध सदैव चलता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में, जैसे सतयुग इत्यादि में, जो दानव थे वो अलग रहा करते थे, देवता अलग रहते थे। तो जैसे यहां पे हम लोग देखते हैं दानवों ने आक्रमण किया देवताओं के लोक पर, देवलोकों पर, तो प्रायः अलग अलग लोकों में रहा करते थे। जैसे जैसे युग बढ़े, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में एक ही लोक में रहने लगे। जैसे हम लोग देखते रामचंद्र जी और रावण, वो एक ही लोक में, एक ही पृथ्वी पर रहते थे। फिर जैसे और बढ़ा कलयुग, द्वापर आया, तो एक लोक नहीं, एक घर में असुर और देवता रहने लगे। जैसे हम लोग देखते दुर्योधन और युधिष्ठिर, तो एक ही घर में, एक ही परिवार में ये होने लगा। अर्थात ये प्रभाव बढ़ने लगा, आसुरी प्रभाव। तो कहां पहले अलग अलग लोकों में रहते थे, आक्रमण करना होता तो उनके लोक पर आक्रमण करना होता था, फिर एक ही पृथ्वी पर रहने लगे, फिर एक ही घर में रहने लगे, और अब ये कलयुग है। तो कलयुग में असुर और देवता अब दोनों एक ही शरीर में रहते हैं, दोनों अंदर हैं। तो किस तरह ये युद्ध चलता है? जैसे पहले युद्ध चलता था कि एक लोक पर आक्रमण होता था, या फिर पृथ्वी पर रामचंद्र जी जाकर वहां पर मार रहे हैं, या फिर घर में ही झगड़े हो रहे हैं। अब कलयुग है, इसमें ये युद्ध हमारे मन में चलता है, अंदर चलता है। ये सूक्ष्म युद्ध देवताओं और असुरों के बीच सदैव चलता रहता है। किस प्रकार से देवता और असुर हमारे अंदर हैं, अगर थोड़ा बहुत प्रयास किया जाए समझने का, तो असुरों की उपस्थिति हम देखते हैं वासनाओं के द्वारा, और देवताओं की उपस्थिति हम देखते हैं नैतिकता के द्वारा। तो ये साधारण हम लोग देखा जाता है कि किसी मनुष्य में वासनाएं भी हैं और थोड़ा बहुत नैतिकता भी होती है। तो इस कलयुग में दोनों एक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। तो वासनाएं और नैतिकता, इसका युद्ध चलता रहता है। वासनाएं अर्थात किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बड़ी तीव्र इच्छा, उसको वासना कहते हैं। जैसे कभी किसी को कोई स्त्री संघ की कामना है, वो बहुत बढ़ जाती है, तो वो वासना कहलाती है। किसी को धन की कामना है, बहुत तीव्र हो जाती है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो वासना कहलाती है। तो ये वासनाएं हमारे हृदय में हैं, ये असुरों का रूप है। और वहीं दूसरी ओर हम लोग नैतिकता को भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के हृदय में केवल वासनाएं होंगी, केवल असुर होंगे, नैतिकता को भी देखा जाता है। और जब भी वो व्यक्ति कोई गलत कार्य करने जाता है, स्वाभाविक है उसको स्वयं उससे हिचक होती है, वो करने से रुकना चाहता है, जानता है कि ये गलत है, समझता है, लेकिन वासनाओं की तीव्रता होने के कारण उसको कर बैठता है। जैसे अवैध संग, साधारणतः ये जाना जाता है, सब जानते हैं कि ये गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है, सामाजिक नियमों के विरुद्ध है। जब ये लोग उस कार्य को करने जाते हैं, तब भी मन में यही रहता है कि नैतिकता के विरुद्ध है, भय होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वासनाओं की प्रधानता हो जाती है, इसीलिए वो कर बैठता है। अर्थात असुर शक्तिशाली हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में असुर और देव वासनाओं और नैतिकता के रूप में रहते हैं, या फिर दूसरा रूप देखा जाए तो गुणों के आधार पर, तमोगुण और रजोगुण ये असुरों का सूचक है और सत्वगुण ये देवताओं का सूचक है, और हमारे शरीर में ये दोनों रहते हैं। तो असुर और देवताओं के बीच युद्ध का अर्थ क्या है, कभी प्रधानता तमोगुण या रजोगुण की होती है और कभी प्रधानता सत्वगुण की होती है, और इन दोनों में हमेशा युद्ध चलता है। जैसे वासनाओं और नैतिकता में चलता है, कभी कभी व्यक्ति के हृदय में वासना होती है लेकिन वो नैतिकता प्रभावी हो जाती है तो उससे बच जाता है, उससे नहीं करता। इसी तरह कभी कभी रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है तो वो सारे ऐसे पाप कर्मों में लिप्त होता है जो साधारणतः समाज में घृणित माने गए हैं। तो ये दूसरे प्रकार का युद्ध हमारे अंदर चलता है गुणों के आधार पर, और गुणों की प्रधानता केवल अंदर नहीं बाहर भी होती है। जैसे जब हम लोग कलयुग कहते हैं, सतयुग कहते हैं, तो सतयुग में ऐसा नहीं था कि केवल सत्वगुण था, तमोगुण रजोगुण नहीं था, ये गुण तो प्रारंभ से रहे हैं, लेकिन सत्वगुण में इतनी प्रधानता, सतयुग में इतनी प्रधानता होती है सत्वगुण की कि तमोगुण और रजोगुण ये बहुत कम होता है, तो बहुत कम प्रभावी होता है। अर्थात अगर ये कहा जाए कि जो सतयुग का सबसे बुरा समय होगा, जो सतयुग का सबसे बुरा समय अर्थात जहां जो दोनों गुण हैं रजोगुण और तमोगुण उनकी प्रधानता होगी उस युग में, वो समय भी कलयुग के समय से अगर तुलना की जाए तो वो समय बहुत अच्छा होगा कलयुग की तुलना में। कलयुग का जो सबसे अच्छा समय है उसको भी अगर लिया जाए और सतयुग का सबसे बुरा समय लिया जाए तो सतयुग का समय अच्छा माना जाएगा। तो गुणों की प्रधानता होती है, तो हमारे अंदर भी दोनों तीनों गुण हैं, तो ये दोनों रूपों में रहते हैं। इसीलिए जब तमोगुण और रजोगुण प्रभावी होता है तब हम सत्वगुण में अपने आप को स्थित नहीं कर पाते, हम युद्ध कर बैठते हैं। तो ये युद्ध चलते हैं नैतिकता वासनाओं में, गुणों में। भाई कई बार देखा जाता है कि सत्वगुण को प्रधानता मिलती है, हम लोग शांत रहते हैं, हम लोग अच्छी भक्ति करना चाहते हैं, धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, ये सत्वगुण की प्रधानता है। लेकिन वहीं रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाता है तो फिर हम लोग उसके आधार पर कार्य करने लगते हैं, बहुत ज्यादा धन कमाना, बहुत ज्यादा किसी को नीचा दिखाना, ये सब तमोगुण और रजोगुण के कार्य हैं, तो ये बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोनों हैं, तो ऐसा युद्ध चलता रहता है। एक और प्रकार से ये युद्ध हमारे अंदर चलता है मन और बुद्धि के बीच में। तो एक प्रकार का युद्ध होता है वासनाओं और नैतिकता के बीच में, एक प्रकार का युद्ध होता है रजोतमो और सत्वगुण के बीच में, एक प्रकार का युद्ध होता है मन और बुद्धि के बीच में। मन हमारा दूषित है भौतिक इच्छाओं से, इसीलिए मन सदैव हमें गलत कार्यों की ओर खींचता है। और बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य है भेद करना, ये बुद्धि का कार्य है, निर्णय लेना और भेद करना, ये दो कार्य बुद्धि के हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन। बुद्धि निर्णय लेती है और भेद करती है। मन का कार्य क्या है, मन का कार्य है केवल विचलित करना। तो मन विचलित करता है, बहुत से उसके ऊपर पहले से मन में छाप पड़ी होती हैं, मन में कई इच्छाएं होती हैं, कई विचार होते हैं, तो ये सारी इच्छाएं ये सारे विचार गलत भावनाओं को जन्म देते हैं। और बुद्धि का कार्य है जो सही है उसको गलत से अलग करना और प्रकट करना सही क्या है। तो ये एक और युद्ध चलता रहता है, एक युद्ध चलता है बुद्धि, बुद्धि अच्छी चीजों को करना चाहती है, मन बुरी चीजों को करना चाहता है। तो मन और बुद्धि के बीच ये युद्ध चलता रहता है, या कहना चाहिए एक और युद्ध चलता है अज्ञान और ज्ञान के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच। ये भी दोनों हमारे अंदर है, अज्ञान भी है और ज्ञान भी है, और हमेशा ये युद्ध चलता है। तो ऐसे कई स्तरों पर ये युद्ध, देव असुर संग्राम आज भी हम सबके अंदर चलता है। प्रभुपाद जैसे तात्पर्य में कहते हैं कि ये चलता रहेगा, इसको रोका नहीं जा सकता जब तक दोनों पक्षों के बुद्धिमान लोग कृष्ण भावना भावित ना हो जाएं। अर्थात जब दो लोगों में झगड़ा हो, साधारणतः ये बात प्रयास की जाती है कि कौन सही है, उस चीज को प्रकट करने का प्रयास होता है जब भी झगड़ा होता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक ये चलता रहेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, झगड़ा कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे हम सही हैं, दूसरा कोई कहेगा वो सही है, एक पक्ष कहेगा अपनी बात, दूसरा पक्ष अपनी बात, और जब तक हम अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते रहेंगे सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उसका सबसे अच्छा हल क्या है, हम ये ना सोचें, अगर कोई मन मुटाव है, मतभेद है, तो ये ना सोचें कि कौन सही है कौन गलत है, हम ये सोचें कि कितने हम कृष्णा भावना भावित हैं। इसलिए जो हम हल ढूंढना चाहते हैं वो कृष्ण भावना भावित हल हो, कृष्ण भावना मृत के स्तर पर हो। मैं सही हूं या मैं गलत हूं, इसको हम जब तक साबित करते रहेंगे तब तक कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी, हमारा मन ऐसा है, हम कभी अपने आप को गलत मान ही नहीं सकते, हमें हमेशा लगता है कि हम सही हैं, तो फिर कभी उसका हल आ नहीं सकता। इसीलिए ये जानने से पहले कि कौन सही है कौन गलत है, हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब तक दोनों पक्षों के बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोगों का क्यों कहा गया, अर्थात क्योंकि जब बुद्धिमान लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं तो अन्य लोग स्वतः उसको स्वीकार कर लेते हैं। यदि यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तरो जनहा, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं वैसे ही अन्य लोग करते हैं। तो इसीलिए दोनों पक्षों के श्रेष्ठ लोगों को कृष्ण भावना भावित हो जाना है, तब आराम से हल निकलेगा। तो ऐसे ये युद्ध अलग अलग स्तर पर चलते रहते हैं, और जैसे फिर आगे वर्णन किया गया कि बहुत से सैनिक क्षति पहुंचे, मारे गए, हाथ टूटे, पांव टूटे, सर कट गए। एक जगह पर वर्णन है कि सर कटने के बाद भी जो खाली धड़ थे वो लोग बिना सर के युद्ध कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारा वर्णन किया गया। तो जब ये युद्ध होता है तो युद्ध का मूल्य क्या चुकाना पड़ता है, यहां पर उसका वर्णन किया गया कि युद्ध तो हुआ लेकिन कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी चोटें लगती हैं। तो युद्ध का मूल्य क्या है, युद्ध का मूल्य ये, किस मूल्य पर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अगर कोई दिखाना चाहे कि हम विजयी हुए तो किस मूल्य पर, कितने सारे सैनिक मारे जाते हैं एक युद्ध में, जीतते हैं युद्ध, कोई एक देश जीतता है, कोई एक समाज जीतता है, लेकिन कितने सारे सैनिक मारे जाते हैं। इसीलिए ये मूल्य जीतने का ठीक नहीं है। तो युद्ध में आगे वर्णन किया कि कैसे वे लोग मारे गए। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि जब ये युद्ध हमारे अंदर चलता है, देव और असुर संग्राम जब मन में चलता है, तो इसका क्या मूल्य हम लोग देते हैं। इसका मूल्य हम लोग देखते हैं अपनी चेतना को क्षतिग्रस्त करके, हमारी चेतना क्षतिग्रस्त हो जाती है, अर्थात कृष्ण भावना भावित नहीं रहती। जिस उद्देश्य के लिए हम आते हैं, जिस उद्देश्य के लिए भक्ति को स्वीकार करते हैं, उस उद्देश्य को भूल जाते हैं, चेतना क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसीलिए ये जो युद्ध है, हर युद्ध में ये होता है। तो इसलिए ये जो युद्ध मन में चलता है इसमें चेतना क्षतिग्रस्त होती है। कैसे क्षतिग्रस्त होती है, फिर वो कृष्ण में नहीं लग पाती, फिर वो केवल जीत जय और पराजय में फंसी रहती है, भौतिकता में हो जाती है। ये चेतना का क्षतिग्रस्त होना है, ये चेतना का आहत होना है। भक्ति में श्रेष्ठ चीज है चेतना को बनाए रखना, भावों को बनाए रखना, भक्ति और प्रेम को बनाए रखना, और जिन कारणों से इनका नाश होता है तो फिर ऐसी चीज का लाभ क्या है। तो इसलिए ऐसे युद्ध से, जो युद्ध अंदर चलता है, जैसे यहां पर सैनिक बहुत बुरी तरह से हताहत हो रहे हैं, ऐसे ही हमारी चेतना क्षतिग्रस्त हो जाती है, भगवान से दूर रह जाती है, भगवान की सेवा में नहीं लग पाती, भगवान के नाम में नहीं रुचि आती, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं, भगवान के श्रवण में कोई रुचि नहीं रह जाती। फिर हमारा मन, हमारी चेतना बस यही है कि किस तरह किसी को परास्त करना, किस तरह विजय प्राप्त करना इत्यादि, जो उद्देश्य नहीं है भक्ति का, इस उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। फिर हम केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए लगे रहते हैं कि कैसे हम बने रहे, हम ये भूल जाते हैं कि कैसे हम कृष्ण भावना भावित बने रहे, ये महत्वपूर्ण है। तो उसमें से कृष्ण भावना भावित निकल जाता है, हम बने रहे बस, नहीं, हम कृष्ण भावना भावित बने रहे, ये महत्वपूर्ण है। हर अवस्था में, चाहे जय हो पराजय हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम कृष्ण भावना भावित बने रहें, ये जीवन का उद्देश्य है, ये भक्ति का उद्देश्य है, ये इस युद्ध का उद्देश्य है जो अंदर चलता है। लेकिन जहां हम उस कृष्ण भावना भावित को निकाल देते हैं तो फिर क्या रहता है, हम बने रहें बस, हमें कोई हिला नहीं सके, हमारे कोई क्षति नहीं पहुंचा सके, ये भावनाएं कृष्ण से दूर कर देती। तो इसीलिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम जाने कि किस मूल्य को हम चुका रहे हैं इस युद्ध के द्वारा। और फिर आगे बलि महाराज अचानक जब देखते हैं कि सारे उनके जो सैनिक हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो वो मायावी चीजों को प्रकट करते हैं। बड़ा सा पर्वत आता है और उस पर्वत से बहुत सारी चीजें गिरने लगती हैं, पत्थर गिरने लगते हैं, बहुत सारे असुर प्रकट होते हैं, बहुत से अस्त्र शस्त्र गिरने लगते हैं, जो सब आक्रमण करते हैं एक साथ देवताओं पर, और देवता संभाल नहीं पाते हैं, कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये अगली चीज है, जब हम चेतना की युद्ध कर रहे हैं, हमारे अंदर जब युद्ध चल रहा है, तो उस समय जब जय और पराजय, हमारी चेतना पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो गई, कृष्ण भावना भावित नहीं रही, हम बने रहे, तब मोह प्रकट होता है। मोह क्या है, क्या मोह प्रकट होता है, जैसे बलि महाराज ने मोह प्रकट कर दिया, जो चीज नहीं है, थी ही नहीं, वही चीज हमें आहत करने लगी। देवताओं के लिए वहां पर ना तो कोई पर्वत था, ना ही कोई असुर उसमें से गिर रहे थे, ना ही कोई पत्थर गिर रहे थे, ये तो माया थी, मायावी चीजों को प्रकट किया था बलि महाराज ने, अपनी शक्ति से सबको मोह में डाल दिया, वहां था कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो क्षतिग्रस्त हो रहे थे। तो जिस समय हमारी चेतना क्षतिग्रस्त हो जाती है, अर्थात हम कृष्ण भावना भावित नहीं रहते, मोह बढ़ जाता, मोह बढ़ जाता है किससे, इस भौतिक जगत से, जिसको छोड़ना जीवन का उद्देश्य है। मोह बढ़ जाता है किससे, अपनी सुविधाओं से, जिनको छोड़ना कठिन होता है। मोह बढ़ जाता है किससे, जो भी हमें भक्ति में प्राप्त हो रहे हैं, चाहे मान सम्मान हो या कुछ भी हो, उससे। अर्थात व्यक्ति मोह में आ जाता है, जो देखता है उसको सत्य मान लेता है, ये मोह। तो बलि महाराज ने मोह प्रकट कर दिया, देख रहे हैं सामने इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा पहाड़, उससे गिर रहे हैं, बड़े असुर आ रहे हैं, पूरा मोह है, वहां कोई पहाड़ हो नहीं सकता उस युद्ध में, कैसे पहाड़ आ जाएगा हवा में। लेकिन बलि महाराज ने प्रकट किया, माया शक्ति ऐसा करती है कि वो इतने मोह को प्रकट कर देती है, इतनी आसक्तियों को प्रकट कर देती है कि हम लोग सत्य को देख नहीं पाते, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं सत्य के प्रति, और हम सोचते हैं कि यही सही है जो दिख रहा है। तो मोह बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि चेतना क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अभी पहले ही देवताओं के जितने सैनिक थे वो मर रहे थे, कई वर्णन है, सर कटे हैं इत्यादि, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, ऊपर से ये आ गए पर्वत। तो पहले ही चेतना क्षतिग्रस्त हो गई है, कृष्ण से दूर हो गई है, अब मोह और बढ़ जाता है। और मोह क्या बढ़ जाता है कि बस कुछ नहीं, थोड़ा समय और, जैसे कहा जाता है हम होंगे कामयाब एक दिन, ये मोह है, हो ही नहीं सकता कि हम लोग कामयाब होंगे। क्या कामयाबी मिलेगी? कामयाबी इतनी ही मिलेगी कि इस भौतिक जगत में बने रहेंगे, बस वही हमारी कामयाबी, बरसों से जन्मों से हमारी कामयाबी वही है, बस इस जगत में बने रहना, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना का है ना। अच्छा, बहुत जोर से, बस यही हमारी कामयाबी है। तो ये मोह है। मोह का अर्थ क्या है? वो जो नहीं है। मोह का अर्थ यह है कि हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहां सत्य के प्रति आंखें बंद हो जाती हैं। और ऐसी मोह अवस्था में, जैसे इंद्र ने जब यह देखा कि बलि महाराज ने इतना मोह प्रकट कर दिया, इंद्र घबरा गए, सारे देवता घबरा गए, भागने लगे कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, देवताओं को अमृत मिल चुका था, निश्चित था उनकी मृत्यु नहीं होगी, फिर डर की क्या बात थी, फिर क्यों भागे? मोह, भूल गए उस अमृत को कि अभी अभी अमृत पिया है, कुछ होने वाला नहीं है, आने दो इनको, पर्वत डालें कुछ भी डालें, हम मरने वाले नहीं हैं, भूल गए उस बात को। इसी तरह हम लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति के अमृत को, हम लोग भी भूल जाते हैं उस मोह के कारण कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावना मृत के रहते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस मोह के कारण भय उत्पन्न हो गया देवताओं में और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। और फिर ऐसे समय में उन्होंने भगवान की शरण ली। तो जब चेतना का युद्ध चले, जब मोह इतना बढ़ जाए कि हमें कोई सत्य दिखाई नहीं दे, भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए। फिर जैसे वो कहें, जैसे हमें प्राप्त हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। तो देवताओं ने शरण ली, भगवान का स्मरण किया और तुरंत भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान का और एक अवतार, हम लोग पहले कई अवतारों का वर्णन कर चुके हैं, ये अष्टभुजा रूप अर्थ आठ भुजाओं वाला अवतार अब भगवान प्रकट कर रहे हैं। गरुड़ पर आए लेकिन आठ भुजाएं थी, आठों भुजाओं में उन्होंने अलग अलग आयुध पकड़े हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। देखिए, सुखदेव गोस्वामी युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, भयंकर चीजों का वर्णन कर रहे हैं, मोह का कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का वर्णन करते हैं उनकी सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं। बहुत सुंदर दिख रहे थे, पीत वस्त्र पहना था, उनके नयन कमल के समान है, ये भक्त है। ऐसा नहीं हुआ कि वो उतना बह गए उसमें कि भूल गए भगवान की सुंदरता, जहां वर्णन का अवसर आया तुरंत सुंदरता का वर्णन कर दिया। तो भगवान को पुकारा, भगवान आए और भगवान ने फिर सभी असुरों को मारना शुरू किया। काल नेमी थे वहां पर, अन्य थे, तो उनको मारना शुरू किया भगवान ने। काल नेमी ने बड़े तीव्रता से भगवान के ऊपर भाला फेंका, भगवान ने उसी से द्वारा उसको मार दिया। तो ऐसे भगवान ने अपने शरण आए हुए भक्तों की रक्षा की। तो इसीलिए वहां पर बहुत सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि भगवान के आने से क्या हुआ। तो कहते हैं कि जैसे व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न में उसको एकदम खतरा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा खतरा है। मान लीजिए कोई भागता हुआ जा रहा है, कोई शेर आ रहा है, ऐसे बहुत सारा कभी कभी खतरे दिखाई देते हैं। हमें भी बहुत साल पहले ऐसे एक बार बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया था, मतलब अब सो रहे हैं, हमें नहीं पता, सो रहे हैं, ऐसा सांप आ रहा है और ऐसा हुआ कि उसने आकर एकदम हमारे ऊपर आक्रमण किया और हम जोर से कूदे, और दरअसल सो रहे थे लेकिन सच में कूद गए और ऊपर कुछ वो लोहे का था वो लग गया, तब नींद खुली कि कहां है, कोई सर्प नहीं है, कुछ नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जैसे जो स्वप्न का भय होता है या खतरा होता है वो जाग जाने से समाप्त हो जाता है, जागने के बाद डर नहीं लगा रहता, सपने में इतना बड़ा सांप देखा था, आंखें खुली तो डर नहीं लगा रहता कि कहीं है क्या, यहाँ है, अरे अरे सपना था, चलो चला गया। इसी तरह वो कहते हैं कि भगवान के आने से सारे देवताओं का भय चला गया, अर्थात भगवान ने आते ही सारे मोह को समाप्त कर दिया बलि महाराज के, क्योंकि जहां भगवान है वहां मोह नहीं रह सकता, माया नहीं रह सकती। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां ना ही माया रह अधिकार। तो माया रह नहीं सकी, सारे जो मोह थे वो चले गए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे स्वप्न से उठकर सारे भय चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान के आते ही सारे मोह चले गए, देवता बड़े प्रसन्न हो गए और फिर भगवान ने उनको मारना शुरू किया। भगवान जब भक्तों की मदद करते हैं तो ये देखिए, भगवान आए अब देवताओं की, इंद्र ने पुकारा था भगवान को या अन्य, लेकिन सारे बाकी जो सैनिक थे उनकी भी मदद हो रही थी। सो भगवान के भक्तों का ये महत्व है कि भगवान के भक्तों के कारण आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी उनसे संबंधित हैं, उनको भी लाभ मिलता है। एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो गिर रही है, वो गिर गई है और उसमें बीच में एक भक्त फंस गए, भगवान के एक बहुत शुद्ध भक्त या बड़े अच्छे भक्त, वो उस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। तो अब वो भगवान को पुकारते हैं, भगवान से कहते हैं रक्षा करो। ये व्यवहारिक तौर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे यहां पर पुकारा तो भगवान स्वयं आ गए। अभी हम लोग सोचेंगे कलयुग में तो ऐसा नहीं होगा, भगवान गरुड़ पर वैसे आ भी सकते, भगवान के लिए कलयुग सतयुग क्या है। लेकिन मान लीजिए तो व्यवहारिक तौर पर क्या होगा कि वो फंसे हुए हैं और वो पुकारेंगे भगवान को, भगवान रक्षा कीजिए, क्योंकि भक्त तो भगवान को ही पुकारता है। तो हो सकता है भगवान बहुत सारे आदमियों को तुरंत भेज दें वहां पर कि वो लोग उनको बचाने के लिए आए। तो जब वो उनको बचाने के लिए आएंगे उस भक्त को, उस भक्त तक पहुंचने के लिए और उसके आसपास जितने लोग हैं उनको भी बचाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि केवल जाएंगे बस उस भक्त को निकाल के ले आएंगे, बाकी लोगों को छोड़ देंगे, मरते रहो यहां पर। तो जो भी दिखेगा उसकी मदद करते हुए वो लोग लेकर आएंगे। अर्थात भगवान ने भक्त की मदद के लिए भेजा, लेकिन लाभ सबको हुआ। इसी तरह जब भगवान आते हैं हृदय में तो लाभ पूरी चेतना में होता है। फिर ये जो देवासुर संग्राम है इसमें देवताओं की जीत होती है, फिर नैतिकता की जीत होती है, ज्ञान की जीत होती है, सत्वगुण प्रधानता पाता है, फिर हमारी जो बुद्धि है वो सही रूप से भगवान में लगकर विजय प्राप्त करती है। तो इसीलिए इस युद्ध में जैसे हम देखते हैं कि देवताओं ने भगवान की शरण ली, हमारे मन के युद्ध के लिए भी आवश्यक है। अगर हम जीतना चाहते हैं, सही दृष्टि में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान को समर्पण करना चाहिए। तो इस पूरे अध्याय में हालांकि बहुत युद्ध का वर्णन है, बलि महाराज के मोह का वर्णन है, लेकिन इसका सार अंत में दिया है कि अगर सच्ची विजय प्राप्त करनी है तो भगवान की शरण जानी चाहिए। भगवान की शरण जाकर ही सही दृष्टि में व्यक्ति मुक्त हो सकता है, विजयी हो सकता है। इस जगत की जय और पराजय ये शाश्वत नहीं है। आज हमारी विजय है, कल उन पराजय हो जाएगी, आज किसी की पराजय है, कल वो विजय हो जाएगा। ये जगत का नियम है, यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। लेकिन भगवान के समर्पण करने से जो प्राप्त होता है वो शाश्वत है। भक्ति, भगवान और भगवान के भक्त, ये शाश्वत है। इस जगत में भी, इस भौतिक जगत में भी, जहां सब कुछ अशाश्वत है, भगवान अशाश्वत नहीं है, भक्ति अशाश्वत नहीं है, भगवान के भक्त अशाश्वत नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवान की शरण जाना चाहिए, ऐसे भगवान की शरण जो हमें सच्ची दृष्टि से विजय प्राप्त करा दे। तो इस संग्राम में, इस देवासुर संग्राम में सच्ची विजय तब नहीं होगी जब हम थोड़ा बहुत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके किसी दूसरे को परास्त कर दें, या इस मन में प्रधानता किसी गुण की ले आए प्रयास करके। नहीं,
सच्ची विजय, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि हम कृष्ण भावना भावित बने, कृष्ण भावना मृत को स्वीकार करें और कृष्ण भावना की दृष्टि से सब चीजों को देखें, वो सच्ची विजय है। इस जगत की कुछ चीज प्राप्त भी हो जाए तो वो भी क्षणिक है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए वो क्षणिक नहीं है। इसीलिए इस युद्ध में विजय उसकी होगी जो इन क्षणिक चीजों को छोड़कर भगवान को समर्पण करके भगवान की भक्ति को, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, उसकी विजय इस चेतना के युद्ध में निश्चित होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई